जयंती 11 अक्टूबर 1975। इस अव्यक्त मुरली से आज का प्रश्न है, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? ब्राह्मण जीवन में क्या लक्ष्य मिले हैं हमें? बाप समान बनना और फरिश्ता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, देवता बनना है, बाप की श्रीमत पर चलना है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनना, फॉलो फादर करना है और राजऋषि बनना है। इनमें से कोई ऐसा लक्ष्य है जो रखने से ही विजयी बन सकते हैं? तो ऐसे तो ब्राह्मण जीवन में बहुत सारे लक्ष्य बाबा ने हमें दिए हैं, लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य रखने से हम विजयी बन सकते हैं? जैसे एक स्टूडेंट टारगेट रखे कि मुझे 90% मार्क्स लाना है, सिर्फ टारगेट रखने से विजयी नहीं हो जाते, मार्क्स नहीं आ जाते, विजयी होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जितना बड़ा टारगेट होता है पुरुषार्थ उतना ही ज़्यादा होता है। अगर पहले से ही 40% का लक्ष्य है तो पुरुषार्थ 40% का ही होगा, कितनी भी कोशिश कर लो 90 पे नहीं जा सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें जो जो भी लक्ष्य दिए हैं सब हाईएस्ट लेवल के दिए हैं, बाप समान बनना है या फिर श्रेष्ठ देवता श्रेष्ठ योगी बनना है, क्योंकि जितना श्रेष्ठ लक्ष्य होता है उतना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ होता है। तो ये जो प्रश्न है कि कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं, इसका आंसर बाबा ने जो दिया है वो बाबा ने कहा है कि हम अभी के विजयी नहीं, कल्प कल्प अनेक बार के विजयी हैं। जो बात अनेक बार की जाती है तो वह स्वभाव संस्कार में स्वतः ही आ जाती है। जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वह कर लेते हैं तो कह देते हैं यह तो मेरा संस्कार बन गया है, तो यहाँ भी अनेक बार के विजयी होने की स्मृति विजय का संस्कार बना देती है। बाबा ने हमें जो भी ज्ञान दिया, हर ज्ञान की पॉइंट्स के साथ आता है कि आप फिर से ये कर रहे हो, आप फिर से देवता बन रहे हो, आपने फिर से बाप को पहचाना, आप फिर से ज्ञान सुन रहे हो। ये फिर से शब्द का क्या यहाँ पे अर्थ है कि हमने ये कार्य जो है बहुत बार किया है, पहली बार नहीं कर रहे। कोई भी काम करने में डर तब लगता है जब पहले कभी किया नहीं होता है, पहली बार कर रहे होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप पहली बार कर रहे हो, ये कल्प का चक्र बहुत बार रिपीट हो चुका है और हर कर्म हमने बहुत बार किया है। तो जो भी कर्म बार बार किया जाता है क्या बन जाता है? संस्कार। जो हमें आत्मा के लेसन से समझ में आता है कि जो भी कर्म मन से जो बार बार सोचा जाता है, बुद्धि से जो बार बार डिसाइड किया जाता है, कर्म किया जाता है, संस्कार बन जाता है। तो हमारे संस्कारों का डायरेक्ट लिंक है कि हमारे मन में क्या सोच चलती है। अगर हमारे मन में सदा ये सोच रहे कि ये कर्म मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, ये कर्म मैंने बहुत बार किया है, तो उसके ही अनुसार हमारे संस्कार जो हैं विजय के संस्कार बनेंगे। और वैसे भी देखा जाता है कि कोई भी कर्म जो है जब बार बार किया जाता है तो वो इतना इजी लगने लगता है, इतना नेचुरल लगने लगता है कि उसको करने के पीछे फिर मेहनत नहीं रहती। तो बाबा हमें ये स्मृति देते हैं, ये याद देते हैं कि ये कर्म आपने बहुत बार किया है और ये स्मृति ही विजय का आधार है। क्योंकि ये जो सारा खेल है, जो सृष्टि का पूरा ड्रामा है, वो स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। जो जो बातें हमें विस्मृत हो गई थी, जो हम भूल गए थे, अभी बाबा के याद दिलाने से वो सारी बातें हमें वापस याद आ जाती हैं और वही हमारे विजय का आधार बनती हैं। अभी जैसे हम लोग ने जब कोर्स किया, ज्ञान सुना, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बुद्धि ने कैसे माना? ज्ञान को सुना, ज्ञान को थोड़ा एनालाइज किया, रियलाइज किया और हमने मान लिया। लेकिन कोर्स कराते हुए या ज्ञान सुनते हुए जब ये बातें कही जाती है कि आपको देवी देवता बनना है तो ये बात बुद्धि एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती है कि मुझे देवी देवता बनना है। ये बात बुद्धि तब एक्सेप्ट करती है जब परमात्मा के हम ये महावाक्य सुनते हैं, आप ही कल्प कल्प देवता बने थे। तब ये इजी लगता है, तब ये बनना आसान हो जाता है। वरना लगता है कि इतने श्रेष्ठ देवता जिनकी मंदिर में पूजा होती है, हम वो देवता कैसे बनेंगे? तो ये जो पॉइंट है, हम ही कल्प कल्प बने थे, इसको बाबा मुरली में दूसरे तरीके से भी कहता है, नथिंग न्यू। जो कुछ भी अभी चल रहा है वो कुछ भी नया नहीं चल रहा है। ड्रामा के बारे में बाबा ने हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके से पॉइंट्स दी हैं। जैसे ड्रामा के बारे में सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सी है कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। और ड्रामा के बारे में कौन सी पॉइंट दी है बाबा ने? कल्याणकारी है, एक्यूरेट, ड्रामा में सफिक्स है, अटल है ड्रामा, कल्याणकारी, हाँ, बदल नहीं सकते, अटल है, चेंज नहीं हो सकता, जू मिसल चलती है। बाबा बोलते एक मक्खी भी अगर यहां से गुजर गई तो वो कल्प के बाद वहीं से पास करेगी, इतना एक्यूरेट ये ड्रामा है। और ड्रामा की ये जो पॉइंट है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर परिस्थिति में ड्रामा कल्याणकारी है। कई बार ये पॉइंट उतनी हम कहें कि सेट नहीं भी होती है। जैसे जब जीवन में कुछ परिस्थितियां आती हैं, कई परिस्थितियां इतनी ज्यादा हैवी होती हैं या जिनको एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल होता है, तब अगर हमें कोई कहे कि ये कल्याणकारी है तो मन उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस समय कौन सी पॉइंट ऐसी है कि जिससे मन को शक्ति मिलती है और उस परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं? ड्रामा की कौन सी पॉइंट ऐसी है? कल्याणकारी है वो तो हमें पता है, अपने नॉलेज से पता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, चुकतू हो रहा है, वो सब ज्ञान तो है। पर कभी इतनी हैवी परिस्थिति में कोई बोले कल्याणकारी है तो एकदम मन एक्सेप्ट नहीं करता। तो कौन सी पॉइंट ऐसी है कि जो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, अगर वो पॉइंट को याद दिला दे या हमें याद आ जाए तो आत्मा को शक्ति मिलती है, उसको ये भी बदल जाएगा। हाँ, कल इस घटना के पीछे कोई राज है जो खुलने वाला है, या फिर जैसे भाई साहब ने कहा ये भी बदल जाएगा, है ना, कोई भी समय सदा नहीं रहता, पास हो जाएगा। और एक पॉइंट जो कहा कि हूबहू रिपीट हो रहा है, यानी कि नथिंग न्यू, ये पॉइंट भी हमने देखा, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है। मैं अगर अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं तो जब मेरे फादर ने शरीर छोड़ा, उस टाइम पर लोगों ने ज्ञान के हिसाब से हमें कई बातें कही, और उसमें ज़्यादातर लोग यही बात कह पा रहे थे कि कोई बात नहीं, ड्रामा में कुछ कल्याण होगा, ड्रामा में कुछ कल्याण होगा। ये बात नॉलेज से समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है और ड्रामा में कुछ कल्याण हो सकता है, होगा, लेकिन मन उतना खुशी से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हाँ ड्रामा में कल्याण है, क्योंकि सारी जो परिस्थिति दिख रही थी वो उसमें अकल्याण दिखाई दे रहा था। तो भले लोग कह रहे थे कल्याण होगा पर मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर जिस दिन उनका संस्कार था, अंतिम संस्कार था, उस दिन की मुरली में एक स्लोगन आया कि माया के हर पेपर को नथिंग न्यू की स्मृति से पार कर विजयी बनो। ये जो पॉइंट मैंने सुनी, मुझे इसके पहले नथिंग न्यू वाली पॉइंट याद नहीं आ रही थी, पर जब ये वाली पॉइंट सुनी कि कोई भी चीज जो हमारे साथ हो रही है हम फर्स्ट टाइम फेस नहीं कर रहे हैं, वरना परिस्थिति फेस करते हुए बार बार यही लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा फेस नहीं किया, इतनी बड़ी परिस्थिति में कैसे फेस करूं। लेकिन जब ये याद आया कि नथिंग न्यू, ये सेम परिस्थिति आप पहली बार नहीं कल्प कल्प फेस करते आए हैं और हमेशा विजयी बने हैं। सिर्फ बाबा ने हमें नथिंग न्यू का ज्ञान नहीं दिया कि जो कुछ हो रहा है कुछ नया नहीं है, साथ में बाबा ने ये भी कहा आपने कल्प कल्प इसको विजयी होके पार किया है। तो इस स्मृति ने उस समय पे बहुत बल दिया। तो ड्रामा की बहुत सारी जो सब पॉइंट्स है हूबहू रिपीट हो रहा है, चेंज नहीं हो सकता, नथिंग न्यू, कल्याणकारी, हर परिस्थिति में कौन सी परिस्थिति में कौन सी पॉइंट काम आ जाती है ये फिर डिपेंड करता है उस परिस्थिति के ऊपर। तो इस प्रश्न के आंसर में जैसे बाबा ने कहा कि जब ये स्मृति रहती है कि ये कार्य पहली बार नहीं कर रहे, कल्प कल्प किया है, तो कार्य करना इजी हो जाता है। और वैसे भी ये सारा खेल, बाबा ने जो भी हमें ज्ञान दिया उस ज्ञान के बाद जैसे जैसे हमारी स्मृति चेंज हुई वैसे वैसे आत्मा में शक्ति बढ़ती रही। जैसे पहले हम अपने आप को बिल्कुल साधारण समझ रहे थे, हम समझ रहे थे हमारे अंदर कोई भी क्वालिटीज ही नहीं है, लेकिन परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया कि सारी क्वालिटीज आपके अंदर ही हैं, और उल्टा आप में जितनी क्वालिटीज हैं दुनिया में किसी में उतनी क्वालिटीज नहीं है, उसके बाद हमारी ये क्वालिटीज जागृत हुई। जैसे एक स्टोरी सुनाते हैं, शायद सबने सुनी भी होगी, कि एक बार एक शेरनी होती है, वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाती है। तो वो जो छोटा सा शेर होता है वहां पे भेड़ों का झुंड होता है, वो उस झुंड में चला जाता है और भेड़ के छोटे छोटे बच्चों के साथ वो भी खेलता है, बड़ा होता है, उन्हीं के साथ चलता है। तो उनके साथ जब वो रहता है तो वो उन्हीं की तरह घास खाने लगता है, उन्हीं की तरह चरने लगता है, उन्हीं की तरह, जैसे वो झुंड में, वरना शेर कभी झुंड में नहीं चलता है, वो उन्हीं की तरह झुंड में घूमने लगता है। और जो भेड़े होती है ना बाकी, वो उसको देख के बहुत उसको वो करती है कि कैसा अजीब सा दिखता है, क्योंकि उन लोगों से अलग दिखता था, बोलते थे इतना अजीब सा दिखता है, ना ही कोई इसका फायदा है, ऊन भी नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, और माना बस हमारे साथ साथ चलता रहता है, इसको हमारी तरह आवाज करना भी नहीं आता है। माना उसको इतना सारा कुछ, वो बेचारा शेर जो होता है बहुत उदास हो जाता है बार बार सुन के कि सच्ची में मैं तो कोई, मेरा कोई यूज ही नहीं है, हर भेड़ ऊन देती है लेकिन मैं ऐसी भेड़ हूं जो ऊन भी नहीं देती है। तो बहुत उदास रहता है वो हमेशा कि देखो ना मुझे बेचारी भेड़े ऐसे सिर्फ पाल रही है, मेरा कोई यूज नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है, कोई दूसरे जंगल से एक बड़ा शेर आता है, वो भेड़ों के झुंड को देखता है तो सोचता है चलो इन पे अटैक करते हैं। तो जैसे ही वो अटैक करने के लिए जाता है वो देखता है इन भेड़ों के झुंड में तो एक छोटा शेर भी है और वो भी भेड़ों के साथ चल रहा है। तो उसको बहुत वंडर लगता है कि ये शेर कैसे भेड़ों के झुंड में चल रहा है। तो वो शेर को अपने पास बुलाता है तो शेर बहुत डर जाता है, वो बोलता है मैं तो अभी बहुत छोटी सी भेड़ हूं, मुझे आप वो नहीं, मुझे नहीं मारना। तो वो शेर बोलता है अरे तुम भेड़ कहाँ हो, तुम तो शेर हो। बोलता है नहीं 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 मैं भेड़ हूँ और मैं भेड़ भी बिल्कुल यूजलेस भेड़ हूँ, मुझसे ऊन भी नहीं निकलती है। तो वो शेर क्या करता है, उसको लेके जाता है नदी के किनारे और बोलता है कि ये पानी में देखो अपने आप को। तो जैसे ही पानी में देखता है तो उसको लगता है अरे हाँ मैं तो बिल्कुल शेर जैसा दिखता हूँ। तो फिर वो दूसरा शेर उसको रिमाइंड कराता है कि आप शेर हो, और जैसे ही उसको स्मृति आती है वो जोर से दहाड़ता है और जो भेड़े अभी तक उसका मजाक बना रही थी वो सारी भेड़े डर के भाग जाती हैं। तो ये क्या हुआ, थोड़ी सी जो विस्मृति हो गई थी उससे सारी शक्ति अपनी डाउन हो गई थी। तो परमात्मा भी क्या करते हैं, हमें सारी बातों की स्मृति दिलाते हैं, आप कौन थे, आप क्या थे और आप ही थे। बाबा हमेशा कहते हैं आप नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा, क्योंकि आप ही कल्प कल्प थे और आपको ही बनना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में बाबा ने यही कहा कि विजय का आधार क्या है, अगर सदा विजयी होना है तो हमेशा ये याद रखना है कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, हम ये कार्य बहुत बार कर चुके हैं। तो जब भी कोई कार्य अभी जीवन में हम करने लगें तो हम अपने आप को पहले ये स्मृति दिलाएं कि ये कार्य हम कल्प कल्प कर चुके हैं। तो ये था आज का प्रश्न, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं। कई बार लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिन परिस्थितियों की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरा भी जो जीवन रहा बचपन से लेके, मैं समझती हूँ शायद इस एज तक मेरी लाइफ में कभी कोई परिस्थिति आई ही नहीं, क्योंकि कभी भी ना तो परिवार की तरफ से, इवन बाबा का बनने के लिए भी भले कोई भी ज्ञान में नहीं थे रिलेटिव्स, घर पे सिर्फ मदर फादर वही ज्ञान में थे, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से कोई ऑपोजिशन नहीं मिला, किसी ने भी उतना परेशान नहीं किया, और जो मार खानी पड़ती, इवन किसी की डांट भी नहीं सुननी पड़ी। इतनी इजी सारी परिस्थितियां, माना इतना इजी सब कुछ लाइफ में क्रॉस करते 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 हम लोग पहुंच गए। तो इसलिए ज्ञान तो बचपन से सुना, 5-6 साल के थे तब से सेंटर पे जाते थे, बचपन से ज्ञान सुना, बचपन से ये सारी बातें सुनी, ड्रामा कल्याणकारी है, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सुन तो सब कुछ रहे थे, लेकिन कभी भी अप्लाई करने का मौका नहीं मिला था। तो पर बाबा ने जब देखा कि हाँ बहुत टाइम हो गया, मैं ज्ञान तो देता जा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो फिर बाबा ने लाइफ में एक परिस्थिति दी, और वो परिस्थिति ऐसी दी कि आज तक जितना ज्ञान सुना था सारा ज्ञान अप्लाई करने की जरूरत पड़ गई एक साथ। 12 फरवरी, जिस दिन शिवरात्रि का बाबा मिलन था, बाबा आने वाले थे उस दिन मेरी माताजी इधर शांतिवन में आए हुए थे, और घर पे मेरे पिताजी अकेले थे, वो भी ज्ञान में है लेकिन वो उस मिलन के लिए आ नहीं पाए थे उस टाइम पे। तो उस दिन का दिन क्या था, 12 फरवरी का दिन लास्ट ईयर 2017 में मेरा समर्पण समारोह हुआ था, लेकिन समर्पण समारोह के टाइम पे हम जानकी दादी जी से मिल नहीं पाए थे, तो मेरी मम्मी स्पेशल आई थी शिवरात्रि के एक दिन के मिलन के लिए, क्योंकि उस दिन हमको जानकी दादी जी से मिलना था और उनकी सौगात देनी थी। तो बहुत ही खुशी एक तरह से अंदर में थी कि हाँ शाम को दादी से मिलना है, और बहुत ही ईजी सब कुछ चल रहा था। और उसी दिन सुबह 9 बजे माना हमारी घर पे बात हुई पापा को बताने के लिए कि हाँ ठीक से पहुंच गए, सब कुछ हो गया, और 9:30 और 10 के बीच में घर से एक फोन आया, जिस फोन में हमें बताया कि पापा ने शरीर छोड़ दिया है और आप तुरंत घर आ जाइए। कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि 9 बजे हमने बात की थी, तो ऐसे कैसे माना, और 9 बजे जो बात की थी उसमें कोई ऐसे एविडेंस ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि कोई आत्मा शरीर छोड़ने वाली, फोन पे हमें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बस ऐसे फोन आया तो एकदम से हम लोगों को कुछ भी याद नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ बाबा की इतनी पावर थी कि हम में से मैं और मम्मी दोनों साथ में थे, हम लोग रोए नहीं, हम लोग बिल्कुल शांत रहे, और हम लोगों ने किसी तरह अरेंज किया कि हम वापस घर पे जाएं। उस दिन का पूरा दिन ट्रैवलिंग करके अगले दिन सुबह 6:30 बजे हम लोग जब घर पे पहुंचे, तो माइंड में तो ये था कि घर पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली डेड बॉडी पड़ी होगी और जो भी सब क्रियाकर्म की वो सब है वो सब उस दिन होगा, लेकिन जब हम लोग घर पहुंचे वहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ सारे रिलेटिव्स घर पे बैठे थे और सब लोग आपस में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। और हम लोग घर पहुंच गए, घर पहुंचने के बाद हम लोगों को एक्चुअल सारी कंडीशन बताई गई कि क्या हुआ है, अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि सिर्फ पापा की जो 4-व्हीलर है वो एक नहर के पास मिली है, और नहर के पास ही वो 4-व्हीलर की चाबी मिली है, उसके आगे क्या है, पापा का फोन गाड़ी के अंदर मिला है लेकिन फोन से किसी का भी कांटेक्ट, माना फोन तो गाड़ी में पड़ा है, कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, माना कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। और उससे पिछली रात जब मम्मी ट्रेन में थी घर पे, पापा संडे को अकेले थे, 11 फरवरी संडे था, 12 फरवरी मंडे था, तो उससे पिछली रात को कुछ लोगों ने कुछ ब्लैकमेलिंग के पर्पस से पापा को कुछ थ्रेटन किया था, ये हमें बाद में बताया उन लोगों ने जो लोग वहां पे थे। तो कुछ लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे थे और काफी लंबे टाइम से ब्लैकमेल कर रहे थे, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जो कुछ भी चल रहा था, ये सब हमारी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं था। हमें ये सब कुछ तभी पता चला जब उस दिन ये सारी सिचुएशन हुई। तो अभी कंडीशन ये थी कि वो जिंदा है या वो नहीं है, अभी इसमें लोग 2-3 तरह के अजम्पशंस लगा रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि इतना किसी ने ब्लैकमेलिंग करके परेशान किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, जो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे उन्हीं लोगों ने कुछ उनके साथ किया, और कुछ लोगों का ये भी सोचना था कि नहीं, शायद किसी ने किडनैप कर लिया। अब ये तीनों सिचुएशंस हमारे सामने थी और माइंड बिल्कुल, माना बाबा से भी हम लोग ये कह रहे थे कि ये कैसी परिस्थिति है, किसी आत्मा का सिर्फ शरीर छोड़ देना, ये भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति होती है दूसरे आत्माओं के सामने, लेकिन किसी का ऐसी तरह से शरीर छोड़ना कि आपको समझ में ही नहीं आए कि उसने शरीर छोड़ा भी कि नहीं छोड़ा, और या फिर वो माना उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 22 दिन तक हर रोज वो जो पानी जहाँ पे वो नहर बहुत बड़ी थी, SYL नहर बोलते हैं, सतलुज यमुना लिंक नहर, जो वहां से शुरू होके जो हमारा होम टाउन है दिल्ली तक जाती है, उस नहर में हम लोगों ने कितने ही माना कितनी छानबीन की होगी, जो गोताखोरों की टीम होती है डेली, माना हम लोगों ने शायद बहुत सारा पैसा सिर्फ इस चीज के लिए लगाया कि अगर वो पानी में है तो हमें एटलीस्ट उनकी डेड बॉडी मिल जाए पानी से। रोज इतना कुछ। और ये जो 20-22 दिन का पीरियड था, इस पीरियड में वो 3 लोग भी अरेस्ट हुए जिन लोगों ने थ्रेट माना ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जो लोग परेशान कर रहे थे बहुत ज्यादा, वो 3 लोग अरेस्ट हुए और उन 3 लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन उन 3 लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हम लोगों ने कुछ किया है। तो पुलिस की उधर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इधर भी ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि पानी से कुछ मिले। और इस पीरियड में क्या हो रहा था, इस पीरियड में माना ये बात हमें पहले दिन ही क्लियर हो गई थी कि इस परिस्थिति में भगवान के अलावा और कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता है। और इस परिस्थिति में सबसे स्ट्रांग जो आत्मा रही वो थी मेरी माताजी, जिनको हमें लगा था कि सबसे ज्यादा वीक वो पड़ेंगी ये सारा कुछ सुन के, लेकिन सबसे स्ट्रांग वो रही। और उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं और मेरा भाई हम दो ही लोग थे, तो मेरे भाई को पूरा उधर इन्वॉल्व रहना पड़ता था वो सर्च करने में या पुलिस के साथ कम्युनिकेट करने में, तो और मम्मी को रहना पड़ता था क्योंकि घर पे डेली इतने ना 50 लोग तो हर रोज आते ही होंगे वही सारी बातें पूछने बताने क्या हुआ क्यों हुआ, तो मैं थी जो थोड़ा सा उस एटमोसफेयर से अलग थी। तो मुझे मम्मी ने बोला कि तुम सिर्फ बाबा के रूम में बैठी रहो और जितना हो सके बाबा के साथ योग करो, और बाबा को सिर्फ यही बोलो कि बाबा हमें क्लैरिटी करके दो, ऐसा नहीं हो कि जीवन भर हमारे मन में सिर्फ यही प्रश्न रह जाए कि वो कहाँ चले गए। क्योंकि वो नहर ऐसी थी जिसके लिए पुलिस का कहना था कि उसमें से सिर्फ 5% बॉडीज जो है रिकवर होती है, माना हर कोई जो नहर में गिर गया उसकी बॉडी मिल जाएगी ऐसा नहीं है। तो मेरा हर रोज यही संकल्प, माना सुबह अमृत वेला भी यही, और सारा दिन ही मैं सुबह 9 बजे से बैठती थी क्योंकि पूरा दिन मुझे कुछ और ना तो कोई काम था और ना ही कुछ और समझ में आता था, सारा दिन बाबा को सिर्फ यही संकल्प दिया कि जो कुछ भी है क्लैरिटी करो, जो कुछ भी है हम ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें क्लैरिटी करके देना। तो ये सब प्रोसीजर इधर चलता रहा और उधर भी जो पानी में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो सब भी चलता रहा, लेकिन उधर और क्या हो रहा था, पानी में बॉडी को ढूंढ रहे थे तो जो भी बॉडी पानी से निकलती थी, क्योंकि पता नहीं बहुत लोग उस पानी में गिरते थे या कूदते थे क्या था, क्योंकि जितना पीरियड हमारा 22 दिन का निकला 3 बॉडीज उस पानी में से निकली। और पुलिस वाले क्या कर रहे थे, क्योंकि आजकल तो जैसे बाबा बोलता है करप्शन और सभी को सिर्फ मनी मेकिंग, उसी में सबका ध्यान रहता है, किसी का क्या कंडीशन है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो पुलिस वाले क्या करते थे, कोई भी बॉडी पानी से निकलती थी तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मम्मी को और भैया को बुलाते थे। तो जब वो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाते थे तो आइडेंटिफाई अगर हमने कर भी लिया कि नहीं ये नहीं है हमारी बॉडी नहीं है, तो भी वो लोग क्या करते थे, वो लोग माना आपको ये करते थे, जबरदस्ती करते थे कि नहीं यही आपकी बॉडी है, आप क्लियरली देख के बता रहे हो कि नहीं ये नहीं है, ना तो ये कपड़े हैं ना तो ये वो है कुछ भी नहीं है, हमारा व्यक्ति नहीं है ये, तो भी वो लोग बोलते थे कि नहीं इसी को एक्सेप्ट करो कि ये आपकी बॉडी है, हमारे ऊपर से प्रेशर है कि ये केस को क्लोज करो, क्योंकि 10-15 दिन हो चुके थे, ना तो बॉडी का पता चल रहा था और ना ही कहीं से किडनैपिंग का कोई क्लू मिल रहा था, तो वो लोग इतना प्रेशराइज कर रहे थे कि इसी को कह दो कि आपकी बॉडी है, और अगर ये आपकी बॉडी नहीं तो फिर आप ढूंढ के लाके दो कहां पे है। अभी ये कैसे पॉसिबल है ना, ढूंढने का काम पुलिस का है कि हम लोगों का है। तो पहली बॉडी के साथ ये हुआ, ठीक है उन लोगों ने जबरदस्ती किया कि फिर हम लोगों ने नहीं माना और हम लोग रिजेक्ट करके आ गए। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसको नेगेटिव वे से टटोलना शुरू किया, उन्होंने माना पापा के बैंक अकाउंट्स निकाल के या उस तरफ से, और उसके बाद भैया के ऊपर प्रेशर कि कई आपने तो आपके फादर को पैसे के लिए ये वो उस तरह से, तो हमने बोला हम तीनों में से कोई वहां पे था भी नहीं उस टाइम पे, क्योंकि भाई नोएडा में रहते हैं, वो वहां पे जॉब करते हैं, हम लोग तो थे ही मधुबन में, वो तो घर पे अकेले थे, और उनके साथ पहले वो कुछ ट्रेजेडी भी हुई है, कुछ ब्लैकमेलिंग भी हुई है, उन लोगों को भी आपने अरेस्ट किया है, उसके बाद भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो। तो कुछ पीरियड वो चला कि हाँ बैंक अकाउंट कुछ ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ, आपके अकाउंट में कितना है, इनके अकाउंट में कितना है, वो सब कुछ कुछ दिन तक पुलिस उस चीज में हरास करती रही। उसके बाद तीसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बॉडी निकली पानी से जिसका थोड़ा बहुत फीचर्स, हाइट वगैरह थोड़ा बहुत पापा से मिलता था। तो जैसे वो बॉडी को सामने रखा तो मम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि लगता है थोड़ा बहुत हाइट से तो कि ये हो सकती है अपनी बॉडी। तो पुलिस वालों ने इम्पोज ही कर दिया कि हाँ यही है आपकी बॉडी, ठीक है लेके जाओ और बस केस क्लोज केस क्लोज। हमने बोला कि नहीं, हम लोग तो जस्ट अभी आइडेंटिफाई करने के लिए आपने बुलाया, कुछ पॉइंट्स तो हम लोग रूल आउट करेंगे। तो नहीं यही है यही है, आपको थोड़ी याद है पानी में तो बॉडी खराब हो जाती है। उन्होंने बोला कितनी भी खराब हो जाती हो, अपने इंसान को तो हम लोग पहचान सकते हैं। तो नहीं, उन लोगों का पूरा और उसमें उन्होंने किस तरह की माना, कुछ तो हरियाणा पुलिस की लैंग्वेज आप लोग समझ सकते हैं, कुछ उस टाइम की जो कंडीशन थी। उन्होंने मेरे ब्रदर को क्या बोला, बोले आप लास्ट कब मिले थे अपने फादर से, ये फरवरी का महीना था, तो उसने बोला मैं दिसंबर में घर आया था तब मिला था। तो बोले फिर तुम्हें क्या याद है कि तुम्हारे पापा कैसे दिखते थे। माना उन लोगों का सोचने का तरीका और उन लोगों का ये इम्पोज करने का तरीका, बोले नहीं यही है, तुम्हें क्या याद है कि कैसे दिखते थे, अभी दो महीने में कोई भूल जाता है कि फादर कैसे दिखते थे। इतना मेंटल हरेसमेंट हर तरफ से, और उसके बीच में एक ये भी एक दुख या फिर एक टेंशन कि आखिर वो है कहाँ पे। और इस पीरियड में एक चीज और हुई, हमारे जो रिलेटिव थे, अभी जब भी बाबा के बच्चों के साथ कुछ हो जाता है तो ब्लेम सारा बाबा के ऊपर चला जाता है, क्योंकि कोई भी ज्ञान में नहीं था, सब लोगों ने सिर्फ एक ही बात बोली कि देखा अभी दोनों बच्चों को बाबा का बना दिया था, इसीलिए वो टेंशन में रहते थे और इसी टेंशन में उनके साथ कुछ हो गया। तुम्हारे बाबा ने क्या किया, ये किया वो किया, तुम लोग बोलो अपने बाबा को कुछ करेगा, माना बहुत कुछ अपनी तरफ से वो लोग हमें सांत्वना देना या वो सब कर रहे थे। माना देखो पूरा परिवार भगवान का था, उसके बाद भी भगवान ने ऐसा किया तो हम लोगों के साथ क्यों नहीं करेगा, माना इस तरह के स्टेटमेंट्स। और ये डेली डेली जो भी घर पे आता था थोड़ी वो करने के लिए, साथ में ये बातें तो जरूर, आप लोग तो भगवान के थे ना, फिर आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। पर इस चीज में हम लोगों ने भी ये पक्का रखा, हम लोगों ने किसी को भी रोके ये रिप्लाई नहीं दिया कि देखो हाँ भगवान ने क्या किया, क्योंकि मम्मी बैठती थी उनके साथ, मम्मी ने हर एक को कहा कि नहीं भगवान कभी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता, जरूर कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ पता लगेगा। बोले देखो ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होता है, ऐसा तो बुरे से बुरे काम करने वाले लोगों के साथ भी नहीं होता है जो आपके साथ हो रहे हैं। हम लोगों को तो नॉलेज है कि सिर्फ इस जन्म का कर्मों का हिसाब किताब नहीं, कुछ पास जन्म का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को तो ये पता नहीं है ना, लोग तो सिर्फ इस काल की दृष्टि से। और इवन मैंने इस पीरियड में देखा हमारे ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे जो, उन लोगों ने भी यही स्टेटमेंट दी कि सच में बाबा ने ये क्या किया ना, बाबा को मना क्या था ऐसे। और इसमें लोगों ने इस बात को भी जोड़ दिया कि लास्ट ईयर मेरा समर्पण किया था, वो समर्पण के कारण वो टेंशन में आ गए थे कि बच्ची को मैंने समर्पित कर, माना जितने मुंह उतनी बातें उस टाइम पर हो रहा था। और मैं क्या थी, मैं वो उसके बाजू वाले रूम में ही मैं बाबा के सामने बैठी रहती थी, मुझे इधर से ये सारी बातें भी सुनने में आती थी और उधर से वो बाबा को भी याद भी कर रहे थे, बाबा के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, सब कुछ चल रहा था कि बाबा कुछ तो क्लैरिटी करके दो। 20 दिन बीत गए, 22 दिन बीत गए, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जब 20 दिन बीत गए तब पुलिस ने बोला कि अगर बॉडी अभी पानी में होगी भी तो भी वो इतनी गल गई होगी कि कोई भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो आप लोग इस केस को मिसिंग में डाल दो। और मिसिंग केस का मतलब क्या होता है, मिसिंग केस मतलब आप 7 साल तक उस व्यक्ति का कुछ भी यूज नहीं कर सकते, उनके अकाउंट्स, उनका घर परिवार, माना कुछ भी सेल नहीं, माना आप रह रहे हो वहां पे ओके, पर आप उनका कुछ भी यूज नहीं कर सकते, कुछ भी बेच नहीं सकते उनके नाम से, कुछ भी आपके अगर उनका कुछ आपके नाम पे है आप उसको ट्रांसफर नहीं करा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन लास्ट में 20 दिन के बाद पुलिस ने हमें बताई कि हम इस केस को मिसिंग केस में डाल रहे हैं और अभी 7 साल तक आप उनकी कुछ भी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये कंडीशन में भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर करे तो क्या करे। अभी 7 साल तक सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाना, माना फिर हमारा आगे का भी जो, क्योंकि पापा पे भी काफी कुछ हम लोग डिपेंड थे, मैं भी समर्पित हूँ और मेरा भाई भी सिर्फ जॉब करता है, तो ये भी कंडीशन ऐसी हो रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 21 दिन लगभग हो गए थे, तो 21वें दिन रात को मैं जब योग कर रही थी तो मैंने बाबा को बहुत हार्डली बोला कि बाबा अभी जो कुछ भी है वो क्लियर कर दो, नहीं तो आपके कितने बच्चों का आपसे से विश्वास उठ जाएगा कि देखो इतनी बड़ी परिस्थिति में बाबा ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। फिर क्या हुआ, 21वें दिन जिस दिन मेरी ये सब बात हुई, अगले दिन ही इनके भैया के व्हाट्सएप पे एक फोटो आई। ये हरियाणा पुलिस का एक पूरा ग्रुप होता है जो कोई भी बॉडी निकलती है या कोई भी ऐसे निकलता है तो वो लोग पूरे अपने पुलिस के ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं। तो एक फोटो आई जो पानी से एक बॉडी निकली थी, हमारे जो होम टाउन है उससे 4-5 घंटे की डिस्टेंस पे वो बॉडी निकली थी। तो वो बॉडी को जैसे ही देखा, वो बॉडी तुरंत माना भैया ने मम्मी को फोटो सेंड की, हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने तुरंत उसको पहचान लिया। पहचान कैसे लिया, एक तो मेन पहचान जो हुई वो तो कपड़ों से हुई, जो कपड़े पहले दिन पापा ने पहने थे वो कपड़े मम्मी को पता थे और वो दुकान का CCTV था उसमें भी वो कपड़े आए थे, प्लस पापा ने स्वेटर पहना था, वो स्वेटर मम्मी यहाँ मधुबन से ही ले गई थी तो वो बाबा का उस पे लोगो था। तो जैसे ही देखा और वो हाइट वेट सब कुछ समझ में आया, माना बॉडी मिल गई। 22वें दिन जाकर बॉडी मिल गई और फिर उसी दिन माना मम्मी और भैया उसी दिन मॉर्निंग 5 बजे और भी 3-4 लोग सभी लोग गए रोहतक, रोहतक के पास जींद करके एक शहर है वहां पे बॉडी मिली थी, जहां से उसको रोहतक PGI में ट्रांसफर कर दिया गया था। रोहतक गए, फिजिकली जाके बॉडी को आइडेंटिफाई किया और वो बॉडी जहां से मिली थी वो पुलिस ऑफिसर भी वहां पे आया था जिसने उस बॉडी को पानी से निकाला था। उसने बताया कि जो बॉडी थी वो लगभग 50 किलो घास के नीचे दबी हुई थी और इतनी नीचे दबी हुई थी, गोताखोरों को हम लोगों ने कितनी बार वो उन लोगों ने गोता खाया, पूरा दिल्ली तक की लहर नहर को भी उन्होंने छाना, लेकिन बॉडी उनको नहीं मिली क्योंकि बॉडी 3-4 दिन में ही किनारे पे चली गई थी और किनारे पर जाकर वो माना जैसे कीचड़ में वो दब गई और उसके ऊपर घास उगती रही 22 दिन तो बहुत होते हैं, तो पूरी तरह अंदर दबी हुई थी। माना अगर हम 50 चक्कर भी वो पानी के लगा लेते तो भी वो बॉडी रिकवर नहीं होनी थी। पर वहां पे से वो बॉडी मिली कैसे, उनका कहना था कि जहां पर वो बॉडी दबी हुई थी वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और जब वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो उन लोगों ने वहां से घास निकालना शुरू किया और घास निकालते निकालते उनको वहां से कुछ बदबू आने लगी। फिर उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने फिर वो बॉडी को वहां से निकाला और वो पुलिस ऑफिसर का अपना ये स्टेटमेंट था, ये सिर्फ भगवान का चमत्कार है वरना आपको ये कभी भी पता ही नहीं चलता था, वहीं पे पड़े पड़े वो स्केल्टन बन जाता था। तो इतने सारे दिनों में सिर्फ अभी जाके ये क्लैरिटी हमें आई कि हाँ पापा ने शरीर छोड़ दिया, एटलीस्ट हमें वो बॉडी मिली। उसी दिन रात को वहां से आते आते रात के 7-7:30 हो गए थे, 7 बज गए थे आई थिंक, अंधेरे में ही हमें उनका संस्कार करना पड़ा क्योंकि बॉडी की हालत बहुत खराब थी। और फिर कहीं जाके ये एक परिस्थिति जो इतनी बड़ी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि परिस्थिति बहुत अच्छे से हैंडल हो गई या खत्म हो गई, लॉस तो बहुत बड़ा हो गया, वो आत्मा की कमी तो कोई भी कभी भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बाबा से उस टाइम पे जो ताकत मिली जो शक्ति मिली उसको कोई भी ये नहीं कर सकता, वरना इतनी बड़ी परिस्थिति थी। मैं समझती हूँ कि शायद कोई कितना भी पावरफुल, कोई कितना भी योगी होगा ना, वो भी इस परिस्थिति में बिल्कुल डाउन हो जाएगा, लेकिन बाबा ने इतनी ज्यादा पावर दी, उसमें भी स्पेशली पावर दी जो बाबा कह माना, इसलिए मुझे इस सारी परिस्थिति में ये समझ में आया कि बाबा ने क्यों माताओं को इतना आगे रखा है, क्योंकि माताओं में इतनी शक्ति होती है, माताएं बड़ी से बड़ी परिस्थिति फेस कर सकती है। मैंने देखा कन्याओं में इतनी शक्ति नहीं होती है, मेरी मम्मी ने इतना स्ट्रांगली इसको फेस किया, संस्कार हुआ, संस्कार के बाद सारा कुछ जो भी विधि विधान वो सब कुछ हुआ, बाबा की रस्म पगड़ी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी मम्मी हर उसमें स्टेबल रही। और उनकी स्टेबिलिटी ने हमें भी स्टेबल रखा। तो हम यही कहेंगे कि ये सब सिर्फ और सिर्फ वो भगवान की मदद है। जो इतने सालों से ज्ञान सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं मन में वो ज्ञान भरता जा रहा था, और जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का टाइम आया तो उस टाइम पे वो सारा ज्ञान हमें यूज हुआ। तो अभी लगभग 12 फरवरी की ये बात थी, 6 मार्च को हमने उनका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद 22 मार्च को मैं यहाँ पे वापस आई। और जब मैं यहाँ पे वापस आई तो माना घर से ही मैंने अपने आप को ये पक्का किया था कि कुछ भी हो जाए मुझे मधुबन में जाके अपने आप को डाउन नहीं, अपना मोराल गिराना नहीं है कि लोगों को मुझे देख के लगे कि बेचारी, क्योंकि जितना हम अपने आप को डाउन रखते हैं उतना ही लोगों से वाइब्रेशन हमें आता है कि देखो बेचारी के साथ क्या हुआ। और जितना लोगों से ये वाइब्रेशन आता है हमारा मोराल उतना ज्यादा डाउन होता रहता है। तो ये बात मैं वहीं से बाबा से प्रॉमिस किया था कि मुझे अपना मोराल डाउन नहीं करना है, और वो मैंने अभी तक भी अपने आप को माना पक्का रखा। और अभी तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, कैसे भी कहते हैं कि किसी भी दर्द की सबसे बड़ी दवा जो होती है वो समय होता है, तो समय बीत रहा है तो समय के साथ सारी परिस्थितियां कुछ ठीक हो गई हैं, कुछ परिस्थितियां अभी भी चल रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाता है तो इतना ईजी नहीं होता उसके पीछे का सारा सेटअप ठीक करना, तो कुछ परिस्थितियां अभी भी चल रही हैं। तो जो बाबा कहता है ना कि योग से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि विनाश हो जाने का मतलब यही है कि जब वो विकर्मों का हिसाब किताब तुम्हारे सामने आएगा उस टाइम पर तुम्हें वो हिसाब किताब उतना बड़ा नहीं लगेगा जो शायद दुनिया के लोगों को उस टाइम पे वो बड़ा लगना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति जो जीवन में आई और जिसमें परमात्मा ने बहुत बहुत माना बहुत ही ज्यादा मदद की और अभी भी कर रहा है। आगे का भी सब कैसे सेटिंग करना है वो सब भी बाबा की मदद से हो रहा है। ठीक है, ओम शांति।